नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरभि यादव और आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। राजीव जी की डायरी के कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ कुछ विशेष बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षाविद एवं समाज सेवी विनोद तिवारी सर जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका मोबाइल वाणी पर स्वागत है और साथ ही दिवाली की ढेरों सारों शुभकामनाएं।
जी जी, धन्यवाद, आपको भी सभी शुभकामनाएं। जी
सर, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है, खासतौर पर जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इतने सालों बाद भी आज भी उनमें कोई ज्यादा सुधार नहीं पाया गया, तो वहीं मध्यम वर्ग वहीं प्राइवेट स्कूलों का चलन भी काफी तेज बढ़ गया है, क्योंकि परिवार मध्यम वर्गीय परिवार का मानना है कि अगर वो सरकारी स्कूलों में डाल दे तो बच्चा को सही शिक्षा नहीं मिल पाएंगी, और वहीं प्राइवेट स्कूलों की इतनी महंगी फीस के वजह से उन्हें काफी समस्या है, तो इस पर आपकी क्या राय, आपकी क्या विचार है?
देखिए, जैसा आपने कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की आज जयंती है, उनके याद में आज इस चल में शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और ये चूंकि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, सबसे बड़ी बात है कि इनकी चिंता ये थी, और उस समय जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से चिंतनीय कार्य किया कि देश में कैसे सर्वांगीण विकास हो, कैसे सबको शिक्षा मिल पाए, सुगम शिक्षा मिल पाए, और ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो शिक्षा से वंचित रह के अशिक्षित रहे, इस बात को उन्होंने दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने चिंता जाहिर की थी, और इसी को लेकर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो बात आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और प्राइवेट स्कूलों की बेहतर पढ़ाई हो, सरकारी स्कूलों में आज भी वो क्वालिटी है, वो गुणवत्ता क्यों नहीं आ रही है, तो जिस तरीके से माननीय अब्दुल कलाम मौलाना अब्दुल कलाम साहब ने, आजाद साहब ने जिस तरीके से सोच रखी थी कि हमारे यहाँ पे बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा हो, गरीबों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा हो, उसी को ध्यान में रखती है हमारे जो भारत सरकार ने और विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों ने। इस तरीके से मुफ्त शिक्षा का जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का जो उन्होंने कंसेप्ट एडॉप्ट किया है, ये बड़ी बात है, और आज बड़ी मात्रा में लोग मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब बात आ रही कि क्वालिटी बेस्ड अच्छी शिक्षा होना चाहिए, तो अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने प्रॉपर वे तरीके से ये किया कि सरकारी संस्थानों में या सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने का शिक्षक जो है वो पहले की थोड़ी सी बात अलग थी, वर्तमान का परिदृश्य अलग है। पहले ऐसा था कि शिक्षकों की कमी और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत सारी चीजें थी, किंतु वर्तमान समय में सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे क्वालिफाइड शिक्षक वहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं, वहाँ पे उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से लेके प्लेग्राउंड से लेके सारी चीजें बेहतर है। अब जरूरत है इच्छा शक्ति की और आम नागरिकों को आगे आकर सरकारी स्कूलों पे विश्वास करने की। आज भी ये बात बिल्कुल तय है और सच है कि प्राइवेट स्कूल जो फीस लेके, मोटी मोटी फीस लेके भी अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, बेहतर शिक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे चाहे ब्यूरोक्रेट्स कह लो, चाहे राजनेता कह लो या अन्य लोग, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो प्राइवेट स्कूल के ही शरण में जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिस दिन ये एक हम कंसेप्ट अपना लेंगे कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल की हमको विश्वास करना होगा, और अब धीरे धीरे वो विश्वास कायम हो रहा है, और अब आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट है, वही स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के भी धीरे धीरे रिजल्ट परिणित हो रहे हैं। थोड़ा सा अभी जरूरत है नीचे काम करने की, छोटी कक्षाओं में काम करने की, और मिडिल स्कूल और प्राइमरी लेवल का जो अभी स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है। जिस तरीके से अन्य राज्यों ने नीतियां अपनाई है कि बोर्ड परीक्षाएं ना ली जाए, जिस तरीके से अपनाई है कि केवल बच्चों को पास कर दिया जाए, ये नीति जिस दिन अन्य बहुत सारे राज्य बंद करेंगे और सारी चीजों को प्रॉपर वे तरीके से, जैसे प्राइवेट स्कूल की अच्छी शिक्षा होती है, वैसे ये यहाँ पे भी काम करना शुरू करेंगे, तो वो जो सोच थी अब्दुल साहब की वो यहाँ पे पूरी होगी।
सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे छिंदवाड़ा जिले का ऐतिहासिक जंगल सत्याग्रह लाखनवाड़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के संबंध में आपकी क्या विचार है?
देखिए लाखनवाड़ी जो है वो हृदय स्थली हमारे जिले की और वास्तव में वो ऐसी पवित्र और वंदनीय पूजनीय भूमि है जहाँ पे महात्मा गांधी जी आए थे। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वहां से प्रारंभ किया था, सत्याग्रह आंदोलन, और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जिले में वो स्थान है। हमारे पास में ही लाखनवाड़ी जो रामाकोना के पास स्थान है वहां पे है, और वो आज भी बड़ा पवित्र जगह है। आज भी वहां पे वहां के जो आसपास के लोग हैं, स्पेशली मैं एक जिक्र करना चाहूंगा रामाकोना की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का, मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे पातुरगा साहब का कि ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लोग, बहुत सारे उस क्षेत्र के लोगों ने आज भी उसको बहुत धरोहर के रूप में रखा है। और हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता समाज का कि हम उस पुण्यार्थ भूमि को सुधार करते हुए समाज के में उसे आगे लाए, और आज उसे एक ऐसा शासन स्तर पर भी हम मांग करेंगे कि उसको एक ऐसी धरोहर बनाए जो हमारी रमणीय स्थानीय और सबकी यादगार भूमि हो।
जी सर, और मैं भी NSS की कैंडिडेट रह चुकी हूँ तो मुझे भी ये गर्व है कि आज लाखनवाड़ी इतना और भी ज्यादा ऐतिहासिक बन रहा है। सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा माना जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़े एग्जाम जो होती है बड़े राज्य स्तर की, वो कंडक्ट कराने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि अमूमन जितनी भी, चाहे वो SSC की हो या फिर MPSC के एग्जाम हो, उसके लिए काफी दूर सेंटर दिए जाते हैं, जिससे आधे बच्चे तो दूर सेंटर होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अभी जिस तरह की जो घोटालेबाजी चल रही है परीक्षाओं में, खासतौर पे आपने देखा होगा कि अभी पटवारी में काफी विवाद हुआ, उसी के साथ एमपी फॉरेस्ट की अभी एग्जाम हुई है लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं है, भर्ती नहीं कराई गई है। साथ ही MP पुलिस कांस्टेबल का भी हो चुका है लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे में बच्चे जो है वो राज्य पर, राज्य की सरकारों पर भरोसा नहीं करना चाहते, वो चाहते ही नहीं कि हम राज्य की परीक्षा दे। इस पर आप क्या राय है, आप क्या विचार है?
देखिए, आपने दो सवाल किया। एक तो पहला सवाल ये है कि हमारे जिला जो इतना समृद्धशाली जिला है, इतना बड़ा जिला है, और आज यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, खास करके बहुत बड़े अच्छे प्रतिस्पर्धी या बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, तो उसमें धीरे धीरे होगा। ये कारण ये है कि आपको याद होगा शायद कि हम पहले छोटे छोटे से एग्जाम देने के लिए, मुझे अच्छे से याद है कि हमको जबलपुर, भोपाल और अन्य महानगरों की ओर जाना पड़ता था, किंतु अब धीरे धीरे वो भी चीजें हो रही है। आज नीट का एग्जाम छिंदवाड़ा में बकायदा उसका सेंटर हो गया है, और भी अन्य संसाधन जैसे जैसे जुटेंगे, जैसे छिंदवाड़ा में सारी चीजें होगी वैसे वैसे यहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे, किंतु उसके बाद भी अभी भी हमारे यहाँ की युवाओं को अन्य शहरों में जाना पड़ता है। ये बड़ा निंदनीय है, और इसलिए हमें विचार करना चाहिए सरकार को, खास करके कि जो बच्चे हैं उनको उन्हीं के जिले में, आसपास में जो बड़े बड़े संस्थान हमारे यहाँ पे, वहाँ पे उनका सेंटर बनाया जाए और वहाँ पे एग्जाम दिए जाए। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये चीजें भी धीरे धीरे होगी, क्योंकि अभी नीट का हुआ है और अन्य दो चार एग्जाम से जो मुझे संज्ञान में वो यहाँ होने लगे हैं। व्यापम के बहुत सारे जो पिछले बार की व्यापम घोटाला और तमाम चीजें हुई थी जो बाहर जाते हैं, तो उस पर बहुत सारी पारदर्शिता लाने की बहुत आवश्यकता है। और जहां तक कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम से, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, अन्य किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी बहुत युवाओं को अपने आप को ठगा महसूस तब करते हैं जब उनका अयोग्य व्यक्ति उसमें चयनित हो जाता है, योग्य व्यक्ति वहीं रहता है। तो उसका कारण सीधा सीधा है कि जो ये सरकार स्तर पे उसको एक बहुत पारदर्शिता के साथ सारी चीजें करना चाहिए, जो अभी भी नाकाम है। और इसके लिए युवाओं को भी आवाज उठाना चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हम चुनको आते हैं उनके लिए भी हमें जरूर उनको ये बातें संज्ञान में लाना चाहिए। और इसके लिए अगर सशक्त कोई नियम कानून बन पाएगा तो शायद ये जो घोटाले और सारी चीजें इससे बचेंगे, और हमारे युवा जो वास्तव में जिन्हें योग्य है, जिन्हें चयनित होना चाहिए, वो हो पाएंगे।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ इतना कीमती वक्त दिया और हमारे सामने आपने कुछ विचार रखे। तो श्रोता, अभी आपने विनोद तिवारी जी के सर कहा, जिन्होंने अभी कहा कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल है अभी भी जिन पे काम करना बाकी, लेकिन कई हद तक अभी कई सारे गवर्नमेंट स्कूल है जो बहुत ही अच्छे स्तर पर आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कुछ एग्जाम सेंटर से भी रिलेटेड हमारे साथ बातें शेयर की, और जिस तरह के जो परीक्षा घोटाले हैं उससे भी सरकार की क्या भूमिका निभाई जा सकती उस पर भी अपनी राय दी। तो सर, एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद, और साथ ही दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
जी जी, धन्यवाद आपका, आपने इस इंटरव्यू के लिए इस योग्य समझा, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली की शुभकामनाएं।
जी सर, तो श्रोताओं मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए मोबाइल वाणी।